तो चर्चा कर रहे थे संगत की, संगत सज्जन की भली और दुर्जन की संगत बुरी। चलो इस चर्चा को जरा और आगे बढ़ाएं। ये इतना महत्वपूर्ण, गृहस्थ के लिए इतना महत्वपूर्ण अंग है, उसके मंगल का खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। कबीरा, संगत साधु की हरे और की व्याधि। अपनी व्याधि तो हरे ही, औरों की व्याधि हरे। कबीरा, संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। उपाधि ही उपाधि, उपद्रव ही उपद्रव। किसी बुरे व्यक्ति का संगत हो जाए तो शांति कहां से आएगी, चैन कहां से आएगी, सुख कहां से आएगा? तो इसलिए सजग रहना चाहिए कि हमें संगत करनी है तो साधु की करनी है। कबीरा, संगत साधु की और जौ की भूसी खाए। खाने को अगर केवल जौ की भूसी मिलती है तो भी क्या हुआ, संगत अच्छी होनी चाहिए। कबीरा, संगत साधु की जौ की भूसी खाए और खीर खांड भोजन मिले। साकट संग न जाए, किसी मूर्ख की संगत में नहीं पड़ जाना। भले खीर खांड मिले खाने को, उससे क्या हुआ, दुर्गति ही दुर्गति होगी, हानि ही हानि होगी। क्योंकि जैसी संगत होगी उसी ओर बहाव हो जाएगा, चाहे अनचाहे उसी ओर बहाव होता चला जाता है। कबीर, तन पंछी भया, जह मन तह उड़ जाए। ये शरीर ऐसा पंछी हो गया कि ये मन उसको जहां चाहे वह उड़ा के ले जाए। मन जैसा चाहे वैसे ये तन करने लगे। जो जैसी संगत करे सो तैसो फल पाए, नियम है प्रकृति का। संगत कैसी कर रहे हैं, संगत बुरे की कर रहे हैं तो बुरा फल आएगा ही, संगत अच्छे की कर रहे हैं तो अपने आप अच्छा फल आएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना होगा कि कौन व्यक्ति साधु है, कौन व्यक्ति सज्जन है, कौन व्यक्ति संगत करने लायक है, उसके स्वभाव को देखना होगा। साधु ऐसा चाहिए और जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिल है और थोथा देय उड़ाए। सूप होता है ना, उसमें अनाज के छिलके भी हैं, अनाज भी है, तो उसको चटकते हुए भूस और छिलके तो दूर हो जाएंगे, अनाज रह जाएगा। ऐसा सार सार को गहले और थोथा दिए उड़ाए। जो लोग साधु होते हैं वो औरों का भला करते हैं, और जो व्यक्ति औरों का भला करता है, कुदरत का नियम है, निसर्ग का नियम है कि उसकी भलाई भी अपने आप होने लगती है। औरों का उपकार करते करते अपना भला अपने आप होने लगा, अपना उपकार भी होने लगा। तभी कहा गया, वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वाले के लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी बांटता है, औरों के भले के लिए बांटता है, लेकिन उसका हाथ भी रंगीन होने लगा मेहंदी से, तो अपना भला साथ साथ होने लगता है। जैसे हम किसी दूसरे का भला करते हैं, प्रकृति के नियम को फिर समझें, बार बार समझें। दूसरे का भला तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने मन को मैल से मुक्त न कर लें। मन मैल से मुक्त हुआ तो परोपकार होना शुरू होगा, परोपकार होना शुरू हुआ तो निर्मल चित्त का लाभ हमें मिलने लगा। सारी बातें, सार को ढूंढना है तो भीतर जाना पड़ेगा। कोई समझे कि पुस्तकें पढ़ करके मैं धर्म के पार सार को खूब समझ गया, नहीं समझा भाई। अनुभूति द्वारा ही धर्म समझा जाता है, इन प्रवचनों से नहीं। प्रवचनों से एक प्रेरणा मिलती है, प्रवचनों से एक मार्ग मिलता है कि इस मार्ग पर चलना है, लाभ तो चलने पर होगा। पोथी पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, यूं लगता है कि ये मार्ग है, इस पर चलना है, लाभ तो चलने से होगा। और सार को जानना है तो अपने भीतर अनुभव लेना पड़ेगा। बड़े बड़े भक्त, नरसिंह मेहता जैसा भक्त अपने यहाँ कहता है कि शरीर शोधे बिना सार नहीं सांपड़े, सार नहीं मिलेगा। शरीर के भीतर अनुसंधान किए बिना, सच्चाई का दर्शन किए बिना सार नहीं मिलेगा। पंडिता पार नहीं पाए पोथे, अरे पंडित तुम्हारी पुस्तकों से कोई पार पढ़ने वाली नहीं है, तुम पार जाने वाले नहीं हो, यहीं भटकते रह जाओगे। अंदर तुम सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जानो, शरीर के भीतर, नहीं तो समय ऐसे बीत जाएगा, जीवन ऐसे बीत जाएगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। सही पंडित नहीं, किताबों वाला भले हो, सही पंडित तो जब सज्जन बन गया तो सही पंडित हुआ। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भवा न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम में ढाई अक्षर हैं, प्रेम शब्द में ढाई अक्षर हैं, इनकी अनुभूति होनी शुरू हो जाए, अंतर्मुखी होकर चित्त को निर्मल करते 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 ऐसी अवस्था पर पहुँचें कि प्रेम ही प्रेम, मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, तो सही माने में पंडित हो गया, सज्जन हो गया। और जो ऐसा हो गया वो अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है। सचमुच पंडित है तो क्या करेगा, विष का इमरत कर दिया, जहां विष फैला हुआ चारों ओर, विष का इमरत कर दिया। और पावक का पानी, आग लगी है जगह जगह, आग लगी है तो उसको पानी करता है, आग बुझाता है। सही ज्ञानी होगा तो यही करेगा। बांका सुधा कर दिया, जो बात बड़ी टेढ़ी रास्ते चली गई उसको सीधा कर दिया। बांका सुधा कर दिया सोई साध ज्ञानी, वही ज्ञानी है। केवल पुस्तकों को पढ़कर कोई समझे कि मैं ज्ञानी हो गया तो धोखे में है, औरों को भी धोखे में डालना चाहता है। ज्ञानी वो जिसमें अनुभूति वाला ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, प्रत्यक्ष ज्ञान जागा, पुस्तकों वाला नहीं, प्रवचनों वाला नहीं, वो तो प्रेरणा देने के लिए। अपने अंदर जो प्रज्ञा जागे, अपने भीतर अपनी अनुभूति से जो ज्ञान जागे, वो कल्याण करता है, अन्यथा कल्याण नहीं होता। तो उस तरह का ज्ञान जागे तो सही माने में ज्ञानी हो गया, सही माने में संत हो गया। और उसके साथ संगत करने में भला ही भला। और जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उसके साथ संगत करने में हानि ही हानि। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, नाल याने दोस्ती, अज्ञान अज्ञानी के साथ दोस्ती करे तो नाल याने दोस्ती कदी न आवे रास, रास नहीं आएगी, उसका कभी भला होगा नहीं, वो तुम्हारे कल्याण के लिए, कल्याण के लिए नहीं होगी, अमंगल के लिए होगी। अज्ञानी तो अज्ञानी है, जो अपना भला नहीं कर सका वो किसी और का क्या भला करेगा। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति की संगत हानिकारक ही हानिकारक होती है। एक घटना, एक व्यक्ति बहुत अच्छा ढोलक बजाने वाला, वाद्य बजाने वाला, अपने बेटे को तैयार किया, वो भी बहुत अच्छा ढोलक बजाने वाला। पास के नगर में जाएं, वहाँ कोई पर्व हो, उत्सव हो, विवाह हो, शादी हो, तो उसमें जाकर के वो अपनी कला दिखाएं और उससे जो पैसा मिले उससे अपनी रोजी रोटी टपा लें। ऐसा हुआ एक बार, लड़का तो लड़का, अभी अनुभव नहीं था, तो बहुत धन मिला, तो एक तो धन मिला उसका नशा, और एक मेरे जैसा ढोलक वादक कौन, अरे इतना बढ़िया ढोल बजाता हूँ इसीलिए तो देखो इतना पैसा मिला। तो वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं की बस्ती पड़ती है, छोटी सी पहाड़ी पर कुछ डाकू लोग रहते हैं। बाप कहता है कि देखो उस पहाड़ी पर डाकू रहते हैं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ तो ठीक है, कोई आवाज़ यहाँ करोगे डाकुओं को मालूम होगा कोई राहगीर जा रहा है तो एकदम वो आकर के हम लोगों को लूट लेंगे। इसको नशा है, कहता है कैसे लूट लेंगे, मैं ऐसा ढोलक बजाऊंगा कि सुनकर मुग्ध हो जाएंगे, बल्कि वो तो हमें इनाम देंगे। बाप समझाता रहा, बेटा माने नहीं, तो ढोल बजाता गया बजाता गया। सचमुच डाकुओं ने देखा, आवाज़ सुनी, अरे कोई जा रहा है, कोई यात्री जा रहा है, जरूर इसके पास कोई धन हुआ आया और लूट लिया। नहीं सुनता किसी का, अति में जाने वाले को, मूर्ख होता है तो अतियों में जाएगा, और अतियों में जाने वाले को सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं मिलता, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए किसी समझदार आदमी ने कहा, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप, इतना बरसे कि बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाए, और वर्षे ही नहीं धूप ही धूप, धूप ही धूप, तो फसल नाश हो जाए। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप, अतियों में जाएगा तो हानि के सिवाय और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मूर्ख नहीं समझता, समझदार आदमी समझता है कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, समय को देख करके ही बोले, और उतना ही बोले जितना कि कल्याणी हो, कल्याणकारी हो तो ठीक, अन्यथा हानि हो जाएगी। तो कहा गया समये मीठा बोलना, अब ऐसा समय है मीठा ही बोलो, तो समये मीठा बोलना, अगर बोलना है तो मीठा, और वो भी समय के अनुसार, और समये मीठा चुप। एक समय ऐसा आता है कि चुप रहने में ही मिठास है, बोलोगे तो कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए समये मीठा बोलना और समये मीठा चुप, और उन्हाले छाया भली और रज्जब सियाले धूप। उन्हाले धूप का समय हो तो छाया बड़ी अच्छी लगती है, और जब ठंड का समय हो तो धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो समय के अनुसार ही काम करता है वो सज्जन है, संत है, समझदार है। लेकिन जो मूर्ख है उसे कौन समझाए, बाप भी अपने बेटे को नहीं समझा सका, कहा भाई ढोलक मत बजाओ, ये समय नहीं है ढोलक बजाने का, और वो कहाँ माना, सारा धन खो दिया। जो इतना मूर्ख है उसको हजार समझाने की कोशिश करो, बदलने वाला नहीं है। तभी संतों ने कहा नीमन मीठो होए, नीमन मीठो होए, सींच भला गुड़ घी उसूं, गुड़ और घी भी भले सींचते रहो, नीम मीठा होने वाला नहीं है, उसका स्वभाव खारापन लिए हुए है, तो खारापन ही प्रकट करेगा, खारापन ही प्रकट करेगा। कैसे सुधारें, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अनेक जन्मों से मूर्ख, अनेक जन्मों से मूर्ख, अनेक जन्मों से दुष्ट, कोई समझावन काम नहीं करती। तो जहाँ समझावन काम नहीं करती वहाँ समझाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न करना भी व्यर्थ। जैसे कहा कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, वो बीन बजाने क्या काम आए, उसको यही नहीं पता कि बीन बजाने भी कोई बड़ा अच्छी बात है और इससे बड़ा अच्छा वातावरण तैयार होता है, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नहीं पता, तो वो तो पगुराती है केवल। बहुत सजग रहना चाहिए, और सजग रह करके ऐसे मित्र गृहस्थ ना, तो जीवन में मित्र तो चुनने पड़ेंगे। कैसे मित्र, ऐसे मित्र चुने जो कि सचमुच सज्जन हो, ऐसे मित्रों से साथ ना हो जाए जो नाम के मित्र हैं पर हानिकारक हैं। भगवान बुद्ध ने बड़े विवरण के साथ समझाया, उनकी वाणी पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना दुष्प्रचार किया गया भगवान की शिक्षा के बारे में, कितनी डिटेल के साथ समझाते हैं कि ऐसे मित्र भी होते हैं जो पराया धन छीनने के लिए मित्र बने हैं, ऐसे मित्र भी होते हैं जो बड़ी बातें करेंगे, खूब बातें बनाए, वास्तविक काम नहीं करे, वास्तविक मदद नहीं करे, ऐसे मित्र भी हैं बड़े खुशामद करे बड़े खुशामद करे, और जहाँ विनाश हो वहाँ सहायक हो जाए विनाश में। बचें ऐसे मित्रों से, वो मित्र के रूप में हमारे दुश्मन हैं। भगवान ने खूब समझा के कहा, मित्र के रूप में दुश्मन हैं, उनसे बचो। जो सचमुच उपकारी मित्र होगा, वो संकट में सुख दुख में हमारा साथी होगा, हितेशी होगा, अनुकंपक होगा, तो काम की बात हुई। हमारे संकट में तो कहीं दूर रहा, मोही न दिखाए, और वैसे लंबी लंबी बातें करे, खूब खुशामद करे, खूब प्रशंसा करे, मौका आने दो मैं इतनी सेवा करूंगा, मौका आने दो मैं इतनी सेवा करूंगा, इतना भला करूंगा, और मौका आया तो मुंह नहीं दिखाए। इसीलिए किसी ने कहा कि कोई मित्र है कि नहीं है, कैसे जांचे कोई मित्र है कि नहीं है, तो कहता है कि रहिमन विपदा ही भली, रहिमन विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, बहुत दिन होगी तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो रहिमन विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, उसका उपयोग हो गया। क्या उपयोग हो गया कि हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोई। मालूम हो जाएगा ये सचमुच हितेशी है, ये हितेशी नहीं है। विपदा आई तो परीक्षा होगी, संकट में ही मित्र की सही परीक्षा होए। संकट आया तब जानेंगे सचमुच मित्र है या नहीं है, तो आए विपदा थोड़े समय के लिए तो जान सकेंगे। इसलिए जो समझदार आदमी है, भगवान का जो समझदार शिष्य है, वो सत्संग की ही कामना करता है, सत्संग की ही कामना करता है। जब भी कोई पुण्य का काम करेगा तो मेरे पुण्य के फल से मुझे अच्छे संगत मिले, बुरे से संगत ना हो जाए। तो हर अच्छा काम करके एक समझदार गृहस्थ, एक धार्मिक गृहस्थ यही कामना करेगा, इमीना पुण्य कम्मेने मामे बाल समागमो, इस पुण्य कर्म के फल के कारण मुझे कोई मूर्ख का समागम ना हो जाए। तो किसका हो जाए, सतंग समागमो हो तू, किसी संत का ही समागम हो। पुण्य इसलिए किया कि मूर्ख की संगत से दूर रहें, संगत की संगत मिले तो संत की मिले। यावन निर्वाण पत्या, जब तक निर्वाण न प्राप्त हो जाए, निर्वाणिक अवस्था न प्राप्त हो जाए, तब तक कोई संत ही मिले, संत ही मिले। सत्संगत में ही कल्याण, बुरी संगत में पड़े तो अपनी हानि ही हानि। खूब समझदारी के साथ पहले तो ये समझें कि संगत करनी है तो भले की करनी है, सज्जन की करनी है, दूर रहना है तो बुरे से दूर रहना है, दुष्ट से दूर रहना है। फिर समझें कौन सज्जन और कौन दुष्ट, इसको जांचें। जांच करके जो सज्जन है उसकी संगत करें, जो सज्जन नहीं है उनसे दूर रहें। तभी कहा, क्षमा करें, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पाप के मित्ते, भजन माने समीप जाना, संगत करनी, पापी मित्र की संगत न करे। न भजे पुरुषाधमे, जो पुरुष अधम है उसकी संगत नहीं। भजे थे मित्र कल्याण, जो कल्याण मित्र है उसकी संगत हो। और भजे थे पुरुषोत्तमे, जो उत्तम पुरुष है, संगत हो तो उसकी हो। सज्जन की संगत होगी तो कल्याण ये कल्याण, और कहीं दुर्जन की संगत हो गई तो अमंगल ही अमंगल। अमंगल से बचना है, मंगल में लगना है, कल्याण में लगना है। धर्म के रास्ते चलें तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण।